नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे मंत्रों की परिभाषा पर, कि मंत्रों की परिभाषा या मैं ये कहूँ मंत्रों का विज्ञान। तो आज का एपिसोड थोड़ा लंबा बड़ा हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा और उस पर आपको मैं विशेष कुछ ऐसे तथ्य बताऊँगा जो आपको बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये लंबा एपिसोड आप ध्यान से सुनेंगे और सुनते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंत्रों का महाविज्ञान। पहले मैं बात करूंगा मंत्रों की परिभाषा क्या है। मंत्र शब्द का अर्थ होता है असीमित। असीमित, असीमित मतलब उसको हम एक सीमित शब्दों में उसको बांध नहीं सकते, क्योंकि वैदिक रचनाओं से प्रत्येक छंद को हम मंत्र कहते हैं। देवी देवताओं की स्तुति या हवन या यज्ञ से निर्मित जो निश्चित किए जो शब्द समूह है उसको भी हम मंत्र कहते हैं। और तंत्र शास्त्रों में मंत्र के अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार मंत्र उसे कहते हैं जो शब्द, जो पद या पद का जो समूह है, जिस देवता को या जिस शक्ति को हम प्रकट करते हैं मंत्रों के द्वारा, उस देवता या उस शक्ति को भी शास्त्रों में या तंत्र शास्त्रों में उसको मंत्र कहा गया है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूँ इसकी परिभाषा, तो इस प्रकार है कि निश्चित वर्ण समूह को यानी एक स्पेसिफिक लेटर को, एक अक्षर को जब उच्चारित किया जाता है या वर्ण समूह को उच्चारित करते हैं उसको हम मंत्र कहते हैं। जिसे हम उच्चारित करते हैं उन वर्ण समूह को कोई विशेष कार्य के लिए जब अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं विशेष ध्वनि के साथ, उसको भी शास्त्रों में मंत्र कहा गया है। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मंत्रों की परिभाषा बताई गई है। जैसे कि पहली एक परिभाषा ये भी है कि धर्म के लिए, कर्म के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो प्रेरणा देने वाली शक्ति है उसको हम मंत्र कहते हैं। देवता के सूक्ष्म शरीर को या इष्ट देवता की जो कृपा प्राप्ति के लिए जो क्रिया बताई गई है उस क्रिया को भी मंत्र कहते हैं। दिव्य शक्तियों को कृपा प्राप्त करने के लिए जो उपयोगी शब्द समूह है, जो शब्द शक्ति है, उसको भी हम मंत्र कहते हैं। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण है, जो विद्वान कहते हैं कि विश्व में जो संपूर्ण व्याप्त शक्ति है वो गोपनीय शक्ति को जब हम जागृत करके अपने अनुकूल, अपने लिए विशेष कार्य के लिए उस विद्या को उपयोग करते हैं, उस विद्या को भी हम मंत्र कहते हैं। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं गुप्त शक्ति को अपने अंदर विकसित करने की जो क्रिया है उस क्रिया को, उस विद्या को भी हम मंत्र कहते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो मंत्र के अलग अलग प्रकार हैं। और अब मैं बात करूँगा दूसरे अध्याय पर या उसका दूसरे भाग पर, मंत्र का उत्पत्ति काल या मंत्र का उद्भव या उसका स्टार्टिंग पॉइंट। मंत्र का उद्भव काल आज तक बिल्कुल अज्ञात रहा है, क्योंकि इसका प्रचलन कब हुआ और इसका प्रारंभ करने वाला कौन ऋषि थे यह आज तक अज्ञात रहे हैं। हाँ, मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि मंत्रों की उत्पत्ति वेदों की रचना से शायद बहुत पहले की गई हो, क्योंकि चार वेद हैं हमारे पास सनातन धर्म में, ऋग वेद, साम वेद, अथर्व वेद और यजुर्वेद। हाँ, और चौथा है यजुर्वेद। उन चारों वेदों के अंदर में ऋग्वेद सबसे प्राचीन आर्य जाति का, या मैं कहूँ विश्व भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और मंत्रों का रूप इस वेद ग्रंथ के अंदर में पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं बल्कि अविकसित अवस्था में पूरा नहीं बताया गया, ये ऐसे विद्वान मानते हैं। तो इससे तो ये निश्चित हो जाता है कि मंत्रों की उत्पत्ति या उसका प्रादुर्भाव इससे पहले विकसित हो चुका था, जो कि ये भी एक डिस्कशन का इश्यू बनता है कि वेद तो आदिकालीन बताए गए आदि और अंत सहित, जब वो आदि और अंत सहित हो तो मंत्रों की उत्पत्ति उसके पहले कैसे हो सकती है, जो कि मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर ये जरूर है कि इसके पूर्व मंत्रों की उत्पत्ति कब हुई थी इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिलता। और वेदों के बाद में भी ग्रंथ संहिता, अरण्यक और उपनिषद भी रहे, और इन ग्रंथों में आप देखोगे मंत्र का विकसित रूप जरूर रहा है। अब बात करें कि मंत्र विद्या जो है वो उसका जो ज्ञान है विश्व के सभी जातियों में आपको मिलेगा, सभी रिलीजन में मिलेगा और रहना भी चाहिए। पर यह कब स्टार्ट हुआ था, इसका विकसित अवस्था कहते हैं पौराणिक काल में हुआ था, और कलयुग के प्रारंभ में यह विद्या अपनी एकदम ही चरम सीमा पर थी, उतना अब नहीं है फिलहाल, परंतु उसका अस्तित्व और उसकी जो शक्ति है वह आज भी विद्यमान है। और प्रत्येक मंत्र उतना ही पावरफुल है जो पौराणिक काल में था। बस अंतर मात्र इतना रह गया है आज कि पौराणिक काल में मंत्र विद्या के ज्ञाता बहुत सारे थे, आज उंगलियों पर गिने चुने ही कुछ विशेष व्यक्ति रहे हैं जिनको मंत्रों का असली ज्ञात है या जिन्होंने अपना जीवन मंत्रमय जिया साधना करते हुए। मैं सौभाग्यशाली रहा, ऐसे एक दो व्यक्ति को मिला जिन्होंने अपना जीवन मंत्र साधना में व्यतीत किया। चलिए अब बात करते हैं एक और अध्याय पर, मंत्रों की ध्वनि अक्षर उसके ऊपर। मंत्रों में जो अक्षर रहते हैं, जो स्वर रहते हैं, जो व्यंजन जिसको कहते हैं, जो नाद और बिंदु का जो प्रयोग किया जाता है, जो अनुस्वार प्रयोग किया जाता है, वे सब देवताओं के भिन्न भिन्न रूपों को और भिन्न भिन्न गुणों को प्रकट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य एक सजीव प्राणी है, उसकी एक आकृति विशेष है, दो कान दो आँख हम सब मनुष्य की है, फिर भी हम सब मनुष्य को एक विशेष व्यक्ति को बुलाने के लिए सांकेतिक रूप से शब्दों का उपयोग करना पड़ता है जिसको हम नाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको और सरल शब्दों में बताता हूँ ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे कि एक जगह पर 10 लोग बैठे हुए हैं या काम कर रहे हैं, हम उन 10 व्यक्तियों को अलग अलग नाम दे सकते हैं, राम श्याम सुरेश रमेश। अब उसमें से मुझे राम को ही बुलाना है तो मैं राम शब्द का ही उपयोग करूँगा, तो उन समूह में से उन 10 लोगों में से राम ही सामने आएगा, मोहन या श्याम या सुरेश जो दूसरे लोग हैं वो आगे नहीं आएंगे, क्योंकि उन सब के नाम और भिन्न रूप अलग अलग हैं पर नाम भी अलग अलग हैं। उसी प्रकार अनेक देवी देवता हैं शास्त्रों में, उन सब के अलग अलग नाम और रूप और गुण हैं, अतः उन सब की पूजा अर्चना उनकी आराधना करने के लिए विशेष देवता का विशेष नाम और सांकेतिक रूप में स्तुति का विधान बताया गया है, और इसीलिए इन मंत्राक्षर में नाद बिंदु को देवी शक्ति को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे उच्चारण की। जिन मंत्रों को हम उच्चारित करते हैं तो उच्चारण से एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है और उस ध्वनि का मंत्र के साथ विशेष प्रभाव जरूर गिरता है, और ध्वनि के अंदर एक बहुत ही विचित्र शक्तिशाली विस्फोट होता है, जो बड़ी शक्तिशाली है वो विस्फोट, जिसको प्रलय में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सूजन कार्य में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे ध्वनि के जो विशेषज्ञ हैं प्रमाणित करके देखें, ध्वनि से विश्व ब्रह्मांड में हम कुछ भी कर सकते हैं। ध्वनि यानी कि वाइब्रेशन का जो साउंड वाइब्रेशन है उसका प्रभाव हम सभी जीवित प्राणी पर देखते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, चाहे वो वनस्पति क्यों ना हो, क्योंकि वनस्पति में भी मनुष्य और पशु पक्षी की तरह सुख और दुख अनुभव होते हैं। उसे इसी प्रकार और मैं सरल विधि से बताऊं, यदि आप किसी व्यक्ति को क्रोध करके डांटते हैं, गाली देते हैं या कुछ कड़वे वचन बोलते हैं तो वह दुखी होता है और शत्रु बन सकता है। यदि उसी व्यक्ति को आप प्रेम से व्यवहार करते हैं तो उसको अच्छा लगेगा, वो प्रसन्नचित रहेगा, ये भी हो सकता है कि वो आपको काम करने के लिए तैयार हो जाए। पर आखिर यह सबका प्रभाव हुआ कैसे, या फिर मैं बोलूँ इस ध्वनि का, इस वाइब्रेशन का चमत्कार क्या है? ध्वनि का ही तो चमत्कार है दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए मधुर जो संगीत बनता है उससे व्यक्ति एकदम मस्त हो जाता है, पूरे शरीर से स्ट्रेस से रहित हो जाता है, क्योंकि ध्वनि में एक विशेष प्रकार लय के साथ जब बोला जाता है तो उसका प्रभाव जरूर गिरता है, वो हम म्यूजिक में देख सकते हैं। जैसे शिकारी को शिकार करना हो तो विशेष ध्वनि से भी उसको अपनी तरफ खींच सकता है। मान लीजिए बीन बजाते हैं विशेष ध्वनि के साथ तो उस बांसुरी की ध्वनि से ही सर्प अपने आप बजाने वाले की तरफ आ जाता है, इसलिए स्पष्ट होता है कि ध्वनि का अपना एक विशेष महत्व जरूर है। और वनस्पति के जो प्रोफेसर हैं श्रेष्ठतम, वो है हमारे भारत के ही TCN सिंह साहब ने कहा है कि संगीत के प्रभाव से आप असमय में फूल और फल लगाकर उसको अपना प्रभाव दिखा सकते हैं कि वनस्पति पर भी ध्वनि का चमत्कारिक रूप पड़ता है। यहाँ तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर राफ हिट, उन्होंने संगीत ध्वनि के द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि संगीत ध्वनि के प्रभाव से ही असाध्य रोगों का निवारण किया जा सकता है, जैसे कि पोलियो हो गया, पैरालिसिस हो गया, स्नायु रोग यानी कि जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रोग हैं, गूंगापन हो गया, ये भी इसका सरल चिकित्सा हम कर सकते हैं। अतः हम दावे के साथ कह सकते हैं ध्वनि में चमत्कार होता ही है, और विधिवत मंत्रों का निरंतर उच्चारण करने से उस उच्चारण के स्वरूप ध्वनि का प्रभाव जो मंत्र उस देवता से कनेक्टेड रहता है उसकी शक्ति को जागृत हुआ करके वो साधक के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको हम कहते हैं आत्मसात कर लेता है, और मंत्र साधक स्वयं देवता तुल्य बना देता है, जिससे वो जन कल्याण का तो समूह करता है, स्वयं का भी कल्याण करता है। अतः मंत्र साधक और देवता तीनों एक दूसरे से संबंध स्थापित कर लेते हैं ध्वनि के माध्यम से, और जब वह स्थापित करके जागृत कर देता है मंत्र की ध्वनि को, तो उससे साधक यानी जो साधना करता है या जो विशेष ध्वनि का उच्चारण करता है मंत्र में, वो जो चाहता है वो उसे प्राप्त कर ही सकता है। और अब मैं बात करूंगा मंत्रों में बीच अक्षर और नाद की उपयोगिता। जिस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु को या स्थान के लिए विशेष संज्ञा दी गई है, ठीक उसी प्रकार मंत्रों में भी अलग अलग देवताओं के अलग अलग संकेत बताए गए हैं, उसको हम बीज कहते हैं। आपने सुना होगा बीज मंत्र कहीं पर, उदाहरण के लिए रीम श्रीम क्रीम एन, ये चार बीज हो गए। ये इसको चार देवता के बीजाक्षर माने गए। जैसे रीम है उसको शास्त्रों में माया बीज कहा गया है, लक्ष्मी का भी बीज बताया गया है। जो श्रीम है, श्री के ऊपर बिंदी, उसको महालक्ष्मी का भी बीज बताया गया है। क्रीम है, इसको काली माता का बीज बताया गया है। और जो एंग है, उसको माँ सरस्वती का बीज बताया गया है। आपने देखा होगा कि मंत्रों के अंत में हुम फट स्वाहा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग विचित्र वर्ण लगे हुए हैं। ये बीज मंत्र के आदि या अंत में जो लगे हैं, वो उसका संकेतिक प्रयोग करके मंत्र के लिए और उस देवता के पूजन के लिए विशेष रूप से उसकी रचना की गई है। क्यों? ताकि उसका विशेष प्रभाव दिखे। मंत्र में देवता के नाम के भी संकेत आपको दिखते हैं, जैसे राम रामायणमा, तो राम क्या होगा, वो राम मंत्र का बीज हो गया, राम के लिए राम हो गया। गणेश के लिए गंग के ऊपर डॉट गंग बोलते हैं। हनुमान के लिए ह के ऊपर बिंदी हंग हनुमते नमः, जो ह उसका हंग जो है वो हनुमान का बीज मंत्र है। उस बीज मंत्र से ही हनुमान के सारे मंत्र की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार दुर्गा के लिए डोंग दुर्गाय नमः, जो मंत्र एक है उसमें जो डोंग है वो दुर्गा का बीज बताया गया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी है। ओम ये जो मंत्र है वो बीज परमपिता परमेश्वर परब्रह्म का प्रतीक माना गया है। और इसी ओम शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, स्थिति हुई है और संहार भी होगा। और इन तीनों कार्यों का बोध भी ओम से ही कहा जाता है। इसीलिए प्राय मंत्रों के प्रारंभ में आपको ओम प्रत्येक मंत्र में दिखाई देगा। और बीजाक्षरों में जो अनुस्वार है और जो अनुनासिक है, ठीक है, ऊपर एक अर्धचंद्रक और ऊपर जो डॉट रहता है उसको हम कहते हैं अनुनासिक, उसको संकेत लगा गया है, उसको हम नाद कहते हैं मंत्र शास्त्र में। और नाद के द्वारा ईश्वर को प्रकट करने की शक्ति बताई गई है। अब मैं बात करूंगा मंत्रों के भेद बहुत हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग मंत्र हैं, पर तीन मुख्य भेद हैं और लिंग भेद के अनुसार उसके तीन प्रकार बताए गए हैं। पुल्लिंग मंत्र भी है जिसको हम सौर मंत्र कहते हैं, स्त्रीलिंग मंत्र है जिसको हम सौम्य मंत्र भी कहते हैं, और तीसरा जो भेद है उसको कहते हैं नपुंसक मंत्र भी बताया गया है, उसके मैं चर्चा में नहीं जाऊंगा। अब मैं बात करूंगा कि मंत्रों का प्रभाव इन सब कैसा रहता है, मंत्रों की उग्रता, उसका प्रभाव और उसके भाव के आधार पर उसका भेद बताया गया है। जैसे कि जिन मंत्रों के अंत में हुम और फट लगते हैं उसको पुल्लिंग मंत्र भी कहते हैं और वो बड़ा ही उग्र प्रभाव दिखाते हैं। जिन मंत्रों के अंत में आपको स्वाहा दिखाई देता है उसको स्त्रीलिंग मंत्र कहते हैं, सौम्य मंत्र, पर वो भी उतना ही प्रभावशाली है। और जिन मंत्रों के अंत में आपको नमन दिखता है उसको शास्त्रों में नपुंसक लिंग मंत्र भी कहते हैं। मंत्र ईश्वर के स्वरूप की तरह निराकार और असीमित बताया गया है। कारण है कि जिस एक ईश्वर की असंख्य भक्त एक साथ पूजा अर्चना करते हैं, दर्शन पाते हैं तथा उसका जो अच्छा फल उसको जो प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार एक ही मंत्र को एक ही समय में असंख्य व्यक्ति यदि उसका उपयोग करते हैं तो असंख्य साधकों द्वारा सिद्धि प्राप्त करें मनोमाचित फल हर व्यक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। मंत्रों में अणु की ऊर्जा रहती है जो बहुत ही विस्फोटक और प्रभावशाली शक्ति होने के कारण अतुलनीय बल और साहस और असाधारण और वेगवान बना देता है साधक को। और यही मंत्र साधक को और ईश्वर को मिलाने का मध्यस्था यानी बीच का ब्रिज भी बन जाता है। जिस प्रकार नदी के दो किनारों को लोगों को मिलाने के लिए सेतु यानी कि ब्रिज बनाया जाता है, मंत्र का भी वही काम है। वो साधक को और ईश्वर के बीच में एक सेतु का रूप धारण कर लेता है। अब अंत में मैं केवल एक बात बताऊंगा, वो है मंत्र और स्तोत्र में अंतर, क्योंकि कई लोगों को लगता है दोनों एक ही है, दोनों अलग है, दोनों में थोड़ा सा तो अंतर तो है, पर मंत्र और स्तोत्र में मूलभूत अंतर केवल इतना है कि मंत्र के शब्द के रूप ना कभी परिवर्तित किए जा सकते हैं, ना किए जा सकते हैं, ना किए जाने चाहिए। जबकि स्तोत्र में या स्तुति या प्रार्थना में आप भावों को मिश्रित करते हुए, उसको ऐड करते हुए अनेक पर्यायवाची शब्द उनको आपको ऐड करते हुए उसकी सहायता से भाव को व्यक्त किया जा सकते हैं, विशेष लय के साथ आप गा सकते हैं, पर मंत्रों में वैसा नहीं है। एक देवता के अनेक अनेक स्तोत्र होते हैं और उसमें परिवर्तन किए जाते हैं और किए गए भी हैं, परंतु मंत्र तो एक ही है और उसमें परिवर्तन होना बिल्कुल असंभवित है। यही कारण है, पर दोनों ही उतने ही प्रभावशाली है। ये भी मैं आपको बता दूं कि मंत्र भी उतना ही प्रभावशाली है, स्तोत्र भी उतना प्रभावशाली है। अब एक और बात, जब मैं मंत्र की कहता हूँ कि मंत्र में अगर हम जप करते तो क्या जोर से बोलना चाहिए या स्तोत्र मणिमन बोलना चाहिए, या मंत्र मणिमन बोलना चाहिए या स्तोत्र मणिमन बोलना चाहिए, तो विद्वान कहते हैं कि मंत्र जब आप, उसके तीन प्रकार हैं, वांचिक, उपांशुक और मानसिक। वांचिक बोलते हैं जो शब्द थोड़े थोड़े निकलते हैं और लेकिन ध्वनि केवल साधक को सुना दे। उपांशिक मतलब थोड़े जोर से, यहाँ मैंने शायद गलती कर दी, वांचिक शब्द होता है कि जो जोर से बोले जाते हैं और पास वाले को जो सुनाई देता है उसको हम वांचिक कहते हैं। उपांशु उसको कहते हैं जब जिसमें साधक खुद बोलता है इतने धीमे से कि केवल उसको ही वो मंत्र की ध्वनि सुनाई देती है जब भी वो मंत्र का जपन करता है। और मानसिक जो मन ही मन किया जाता है उसको मानसिक जप कहते हैं। तो ये तीन प्रकार हुए। तो अधिकतर साधक कहते हैं आप जितना मन ही मन मंत्र को स्मरण करते हो, मन ही मन जप करते हो, उतना ही उसी शक्ति बढ़ती है। और जहाँ स्तोत्र की बात आती है, स्तोत्रों का आपको मन में नहीं बल्कि आपको उच्चारित करके उस स्तोत्र का पठन करना चाहिए। तो ये रहा मैंने संक्षिप्त में जितना हो सका सरल शब्दों में अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको मंत्र और उसकी शक्तियों के बारे में एक परिचय देने का हल्का सा प्रयास किया है। आशा रखता हूँ मेरे इस प्रयास को ईश्वर सफल बनाएगा। और यदि आपको इस एपिसोड में कुछ ज्ञान का तथ्य दिखे तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में जरूर फॉरवर्ड करें। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ एक अगले एपिसोड में नए तथ्य और नए विषय के साथ में। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और आप सब में बैठे उस मंत्र स्वरूप ईश्वर को मेरा वारंवार धन्यवाद है।